मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य इस पर बात करूंगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन एक बात शुरू में कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, यूं कह लीजिए कि हम लोगों ने प्री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए, खासकर जो हमारी जानकारी में नहीं है, जिनका उत्तर हम सीधे सीधे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कैसे 50% एक्यूरेसी तक पहुंच पाए, इसके बारे में विस्तार से मैंने आप सबसे बातें की हैं और आप सब ने उतने ही उत्साह से इसमें भाग लेकर के मेरे उत्साह को बढ़ाया है। अलग अलग सब्जेक्ट को लेने की कोशिश की, हम लोगों ने अर्थशास्त्र पर भी बातें की हैं, हम लोगों ने थोड़ा सा ज्योग्राफी पर भी बातें की हैं, हिस्ट्री पर भी कुछ बातें की हैं, इस तरह से कुछ विषयों पर हमने बातें की हैं, और विषयों पर भी बात की जा सकती है साइंस को छोड़कर। और साइंस में भी हो सकता है कि कोई आपको बताने वाला गाइड मिल जाए, इसी तरह से बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि वह मेरा अपना विषय नहीं है, मेरी समझ में उतना नहीं आता है, तो इसीलिए जब समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप चीजों को ढूंढ भी नहीं सकते। देखिए, ढूंढना तो तभी होता है जब कुछ पल्ले तो पड़े। तो दोस्तों, दूसरे विषयों में भी पूरी की पूरी यही संभावना रहती है, इस पर आप विश्वास करें। अब मेरा आपसे पूछना यह है कि चूंकि काफी लंबे समय से यह सीरीज चल रही है, तो हो सकता है कि आप भी थोड़ा बहुत उकता गए हों, या ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नहीं, अब इसको लेकर के जो क्षमता आनी चाहिए वो हमारे अंदर आ चुकी है और आगे हम इसे और डेवलप कर लेंगे। तो आप सब मुझे बताएं कि क्या करें, इसे बंद करके कुछ और नया शुरू करें, और अगर नया शुरू करें तो फिर वह क्या हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं सीधे वे बातें करूं जो आपके सीधे काम की हों, आपको मदद पहुंचा सकें। तो आप मेरा इतना काम कर दें कि मुझे बताएं कि अब क्या हम सब मिलकर करें। तो फ्रेंड्स, आइए अब कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों, इस बीच में लक्षद्वीप का जो मामला है वो काफी तेजी पकड़ता जा रहा है। मैंने ध्यान होगा कुछ दिनों पहले आपसे बताया था कि किस तरह से लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं उन्होंने कुछ आदेश निकाले हैं और उन आदेशों का जबरदस्त रूप से विरोध हो रहा है, और अब इस विरोध ने बढ़ते बढ़ते एक तरीके से राष्ट्रीय विवाद का रूप धारण कर लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बातचीत होने लगी है। इसका मतलब है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से अब यह टॉपिक इंपॉर्टेंट दिखाई देने लगा है। तो फिलहाल मैं इस पर बात करने नहीं जा रहा हूं। इसके बीज जो हो सकते हैं, बीज बिंदु जिसे आप कहते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूं। यहां मैं केवल यह बताना चाह रहा हूं कि इस पर आपको जब भी एडिटोरियल कमेंट्स, आर्टिकल या और भी कुछ पढ़ने को मिलता है तो प्लीज उस पर ध्यान दें, और मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा ही। दोस्तों, आज के एक अखबार में एक छोटी सी घटना की चर्चा है, और घटना की इस मायने में है कि आप यूं कह लीजिए कि सीधे सीधे यह कोई वैसी घटना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जनरल स्टडीज की दृष्टि से इस पर ध्यान थोड़ा सा ही सही लेकिन दिया जाना चाहिए। मैंने महसूस किया है कि ज्योग्राफी पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खासकर लोकेशंस वगैरह को लेकर के, जैसे महासागर है या और दूसरी इस तरह के स्थानों को लेकर के, तो उनका ज़्यादातर संबंध करेंट अफेयर्स से होता है। और मैंने ये भी महसूस किया है कि जिस करेंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ बहुत वेल नोन करेंट अफेयर्स नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई हो तो हमारे आसानी से वो पकड़ में आ जाएं। वो थोड़ी सी चर्चा होती है, किसी वजह से कुछ अखबारों में चर्चा हो जाती, हो सकता है कि न्यूज़ में आए ही न, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में वो आ जाता है। तो इसी तरह की एक घटना मुझे पढ़ने को मिली है, उसे मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक सागर है, उसका नाम है मारमरा, ये टर्की में है, मारमरा सागर। ये सागर जो है बेसिकली ब्लैक सी यानी कि काला सागर और एजियन सागर, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मारमरा एक सागर है जो बेसिकली काला सागर और एजियन सागर को कनेक्ट करता है, और ये जो मारमरा सागर है ये बेसिकली टर्की में है, आप कह लीजिए टर्की इसके किनारे है, और टर्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए। दोस्तों, यहां सफाई का काम शुरू किया गया है, समुद्र की सफाई का काम शुरू किया गया है। ये माना जा रहा है कि इस सागर में लगभग लगभग 100 फीट की गहराई तक सी नॉट जम चुका है, सी नॉट जम चुका है, चलिए बोलचाल की भाषा में हम कह लें कि गाद जम चुका है 100 फीट की गहराई तक, सोचिए। ठीक है, तो अब इसकी सफाई का काम शुरू हुआ है और इसकी सफाई करने में भी आप सोचिए कि लगभग 3 साल लग जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये सी नॉट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली समुद्रों में या पानी में आपको एक चीज दिखाई देती होगी, शैवाल, एल्गी, एक हरी हरी छोटी 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 पत्तियां होती हैं वो। तो जब वो पत्ती वो सब बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो होता यह है कि समुद्र की सतह पर फिर एक लसलसा पदार्थ बनने लगता है, इन पत्तियों के कारण ही लसलसा पदार्थ बनने लगता है। तो धीरे धीरे वो इतना बन जाता है कि जो समुद्र की सतह होती है उसके ऊपर भूरी मटमैली एक चिपचिपी सी परत जमा हो जाती है, परत से जम जाती है। और ये परत इस तरीके की होती है कि फिर इसमें नाव चला पाना संभव नहीं होता है। तो आप एक तरीके से ये कह लीजिए कि समुद्र बेकार सा हो जाता है। इसी पदार्थ को हम कहते हैं सी नॉट। तो ये जो मारमरा सागर है इसके सतह पर ये बहुत ज्यादा जम चुकी है, तो इसकी सफाई की जा रही है। बस घटना इतनी सी ही है। तो यदि यह बात आपके दिमाग में रहेगी और बाय द वे इस पर प्रश्न पूछ लिया गया तो डेफिनेटली उसका उत्तर आप दे सकेंगे। दोस्तों अब मैं आता हूं सीधे सीधे आज के मुख्य विषय पर, और वह MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वैसे भी सामान्य रूप में होनी चाहिए, लेकिन इस साल के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। प्री एग्जामिनेशन के तहत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो आस्पेक्ट हो सकते हैं उन आस्पेक्ट पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और मुख्य परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की डिमांड अभी किसान क्या कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए कह रहे हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक तरह से वैधानिक कर दे कि सरकार घोषित करेगी ही करेगी, लेकिन सरकार इसे कानून का रूप देने में हिचकिचा रही है। तो स्वाभाविक है, सरकार क्यों हिचकिचा रही है या इसका सही उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का, तो इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैंने इसका चयन किस लिए किया है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, न्यूज में भी आपने सुना है और अखबारों में भी आपने खूब पढ़ा है कि सरकार ने कल खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। तो आइए इसे थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और यदि समय रहा तो थोड़ा सा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। देखिए, जब आप इसी खबर को एक तो सामान्य तरीके से आपने पढ़ लिया कि ठीक है धान का इतना बढ़ा दिया, तिलहन का इतना बढ़ा दिया, सामान्य सामान्य तौर पर ये आपने पढ़ लिया, और याद करने की जरूरत नहीं है कि मूंगफली का कितना किया और सरसों का कितना किया और फलाने का कितना किया, इनकी जरूरत नहीं होती है इतने डिटेल्स में, कभी आप यूं कह लीजिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपसे पूछता नहीं है, लेकिन एक सामान्य धारणा दिमाग में बन जानी चाहिए। तो दोस्तों जब आप न्यूज सुनते हैं और अखबार में पढ़ते हैं तो कितना बढ़ाया गया यही हमारे दिमाग में मोटे मोटे तौर पर चीजें रह जाती हैं, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इससे थोड़े से आगे की चीजें आपकी चेक करना चाहता है। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, सीधी सी बात और ये तो बहुत ही वेल नोन फैक्ट भी है कि खरीफ फसलों के लिए घोषित किया गया है, खरीफ फसलों के लिए, और आप जानते ही हैं कि किन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं, और इसके बाद कुछ अखबारों ने तो बकायदे पूरी लिस्ट दी हुई है कि किन किन के कितने कितने रेट बढ़ाए गए हैं। तो जब आप उस लिस्ट को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सब खरीफ की फसलें हैं। जैसे अभी मेरे मुंह से निकला सरसों, तो क्या सरसों खरीफ की फसल है? ये मेरे मुंह से निकल गया है, अभी इसके रेट घोषित नहीं हुए हैं, है ना, इसके रेट रबी फसल में घोषित होंगे। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि रबी फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, राइट? यही सही मायने में आप यूं कह लीजिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग का आधार होता है, जब हमारे दिमाग में चीजें स्पष्ट होती हैं, और वे चीजें स्पष्ट होती हैं जिन्हें हम मान करके बैठे रहते हैं कि ये चीजें हमारे दिमाग में स्पष्ट है, जबकि ऐसा है नहीं। फिर आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, न्यूज में भी सुना होगा कि ये जो खरीफ की फसलें जो घोषित की है ये किसने की है? क्या कृषि मंत्रालय ने घोषित की, क्या इसको लेकर के जो एक आयोग बना हुआ है उस आयोग ने इसे घोषित की, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है जिसे हम CACP कहते हैं, क्या उसने घोषित किया, किसने घोषित किया न्यूनतम समर्थन मूल्य? जब आपके दिमाग में एक क्लिक करेगा या ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने मंत्रिमंडल कैबिनेट जो सर्वोच्च आप कह लीजिए कि शक्तिशाली संस्था है, सारे निर्णय सरकार का मतलब ही कैबिनेट है। हालांकि सरकार के क्या क्या मतलब हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सरकार का मतलब ही कैबिनेट है। तो कैबिनेट की कई समितियां होती हैं, उनमें से एक समिति होती है आर्थिक समिति, और उसने घोषित की, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई लेवल डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने की, ये आपको जान लेना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि 3 साल पहले जब गन्ने का मूल्य घोषित किया गया था तब उसमें दिया हुआ था कि मंत्रिमंडल की कौन सी समिति से घोषित करती, कुछ मुझे इस तरह का ध्यान आ रहा है। दोस्तों अब क्या सीधे सीधे कैबिनेट अपने मन से घोषित कर देती है या इसको भी किसी के समर्थन की जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है, ये कैसे घोषित कर देती है? और अगर घोषित करती है तो इसे घोषित करने में जो सहायता देने वाली एजेंसी है वो कौन है वो, और वो किस तरीके से सहायता देती है? फिर आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि हमारा तो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सरकार घोषित कर देगी, सरकार खरीदेगी भी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदेगी भी, धान की घोषित कर देगी, धान की खरीदी करेगी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राज्य सरकारें भी खरीदेंगी, तो क्या राज्य सरकारों से पूछा ही नहीं जाएगा कि भैया हम इतना मूल्य घोषित करते हैं? केंद्र सरकार डिसाइड करेगी और थोप देगी, तो क्या इसमें राज्यों से भी पूछा जाता है? या आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, मैं बता नहीं रहा हूं यहां, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात कही, तो इतने सारे वस्तुओं के समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं ना, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, मक्का है, धान है, मूंग है, अरहर है, उड़द है, तिल है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, धान है, ढेर सारे। तो इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी खरीदी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है और दूसरों की खरीदी नहीं करती? देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक आधार होता है कि बाजार में जो लोग खरीद रहे हैं वो कम से कम इतनी कीमत दें, और अगर इतनी कीमत बाजार में उनको नहीं मिल रही तो सरकार कहती है कि हम खरीदेंगे। तो ठीक है, धान और गेहूं तो आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए खरीद लेंगे, लेकिन बाकी चीजें, तिलहन कौन खरीदेगा, दलहन कौन खरीदेगा, क्या वो भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है, इसकी भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो अब आप देखें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक सामान्य सा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन जब आप प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इसकी बारीकियों में जाने लगेंगे तो ढेर सारी चीजें आपको और भी जाननी होंगी। तो दोस्तों आज इस पर थोड़ी सी मेहनत करें, ढूंढें इनके उत्तर, आपको मजा आएगा। फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको उपलब्ध करा रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक मित्र का नाम है कंवलजीत कौर, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।